निबंध रत्नावली में उस पाठ का निषेध किया है। उनका कहना है कि जैन समाज प्राकृत भाषा को नहीं जानती, इसलिए अशुद्ध उच्चारण करती है और शुद्ध उच्चारण उसका ये होना चाहिए। ऐसा करके उनने एक सुझाव दिया और फिर वो एक बैठक हुई थी पिछली शताब्दी में, कई विद्वानों ने मिलकर के नमोकार के उस चत्तारी दंडक पाठ को परिवर्तित किया था व्याकरण से। तो उसमें पहला जो पाठ था वो दूसरा था, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित्व धम्मो मंगलम। अब बदला हुआ जो पाठ है उसमें चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित्व धम्मो मंगलम। तो चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पंडित्व धम्मो लोगुत्तमा या लोगुत्तमो, ऐसे दोनों पाठ थे पुराने। और अब नया पाठ क्या है, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पंडित्व धम्मो लोगुत्तमो। फिर तीसरा चत्तारी शरणम पवज्जामि, पुराना पाठ था अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडित्व धम्मो शरणम पवज्जामि, पुराना पाठ था। फिर इन्होंने विद्वानों ने व्याकरण से उसको सुधार करके चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम, हू दीर्घ हो गया, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडित्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये पाठ बदल दिया। और अभी किसी भी नई पूजा की किताब को देखो आप तो उसमें ये बदला हुआ पाठ मिलेगा, क्योंकि एक बार मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हो जाता है फिर उसको बेचारी जनता तो लाचार होकर के स्वीकार कर ही लेती है। अब इसके बाद फिर उस लेख को पढ़ करके हम प्रभावित रहे कुछ वर्षों तक, और हमने कई लोगों को सुधार करवाया कि तुम ये पुराना पढ़ रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन उसके बाद फिर दिवाकर पंडित जी मिले जबलपुर में, उन्होंने पूछा कि महाराज ये पुराने पाठ में क्या बाधा है, मतलब पुराना पाठ कहाँ गलत है। तो फिर हमने वही जो पढ़ा था, क्या होता है कि अपन जो सेकंड हैंड रहता है अधिकतर ज्ञान, सेकंड हैंड मतलब अपना मौलिक नहीं है, कहीं और से उधार लिया हुआ है। तो फिर वो सारे तर्क हमने उनके सामने रखे, अब वो भी कम नहीं थे। उनने बोला कि महाराज एक प्रश्न उन्होंने जो किया, जबरदस्त प्रश्न, भाषा पहले बनती है या व्याकरण पहले बनता है। तो क्या प्रश्न किया, भाषा पहले होती है या व्याकरण। फिर हम चौंक गए कि इसका जवाब क्या है, अगर व्याकरण बोलते हैं तो व्याकरण काय का व्याकरण, भाषा ही नहीं है तो काय का व्याकरण। तो फिर ये तो स्पष्ट है कि भाषा पहले होती है। फिर बोले कि इस प्राकृत भाषा में कितने सारे विकल्प हैं, कितने भेद हैं। शौरसेनी नाम की एक प्राकृत है, मागधी नाम की प्राकृत है, महाराष्ट्री नाम की प्राकृत है, फिर एक प्राकृत नाम की ही प्राकृत है, फिर अपभ्रंश नाम की प्राकृत है, पैशाची नाम की एक प्राकृत है, अनेक प्रकार की प्राकृत भाषाएं हैं, इन सबको मिक्स कर दो अब एक पंचमेली प्राकृत भी बनती है। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि व्याकरण से अशुद्ध है, क्योंकि प्राकृत व्याकरण बड़ा विचित्र है, उसमें इतनी छूट है कि आपको गलत लग रहा है लेकिन फिर भी सही अर्थ निकाला जा सकता है। संस्कृत व्याकरण और प्राकृत व्याकरण में बड़ा अंतर है, प्राकृत व्याकरण में बहुत गुंजाइश है। जो जान दी सो नाणम, प्रवचन सार की गाथा है, क्या कह रहे हैं, जो जान दी सो नाणम। अब देखिए इसमें संस्कृत व्याकरण से तो गलत हो जाएगा, यद जानाति तद ज्ञानम बनेगा संस्कृत व्याकरण से, क्योंकि ज्ञान नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के साथ जो नहीं लगाएंगे, जो पुल्लिंग शब्द है, यह जो जानदि सो नाणम सह ज्ञानम, ये बन ही नहीं सकता। लेकिन प्राकृत में बनता है। तो इसी प्रकार लिंग वचन आदि संबंधी जितने दोष अपन समझ रहे हैं प्राकृत व्याकरण की अपेक्षा, या अपने जो भी व्याकरण है अपने उपलब्ध व्याकरण, हो सकता है कि वो दोष न हो, और यदि वास्तव में दोष होते तो फिर इस चत्तारी दंडक पर आचार्यों ने भी अपनी लेखनी चलाई है। जैसे अपन प्राचीन ग्रंथों में देखें तो एक क्रियाकलाप नाम का ग्रंथ है, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने उसको विस्तृत किया है। वो बहुत पुराने पुराने जो पाठ हैं, उन पाठों पर उन्होंने व्याख्यान लिखा है प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने। और देखो, मंत्र और तंत्र आदि की जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ जाए इसलिए हम इतना व्याख्यान कर रहे हैं, इतना विस्तार कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि हम कहाँ गाथा थी और फिर कहाँ चर्चा चली गई, ऐसा नहीं है। वो बराबर लिंक हमारे ख्याल में है। तो क्या है कि वो जो क्रियाकलाप ग्रंथ है उसमें आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने इस चत्तारी मंगलम आदि पाठ की टीका की है, और वहां पर उन्होंने पाठ वही पुराना रखा है, उन्होंने कोई संशोधन उसमें नहीं किया। और ज्ञानारण्यक ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने जो चत्तारी मंगल पूरा पाठ दिया है, 127 अक्षर का मंत्र पदस्थ ध्यान में दिया है, उसमें भी उन्होंने यथावत उसको वैसा का वैसा ही रखा है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में इसी ग्रंथ में, जिनके पास ये बड़ी किताब हो, बाकी अभी जो शोध चला था अभी कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया, तो क्लीम ये बीजाक्षर अपने को इन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे पुराने ग्रंथों में। वैसे कुछ मंत्रों में आपने देखा होगा ना क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा और हम नमः स्वाहा, फिर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय तीर्थंकराय नमः, वहाँ भी क्लीम आता है, लेकिन क्लीम इन पुराने मंत्रों में अभी मिल नहीं पा रहा है। तो इसमें पीछे चत्तारी मंगलम का पुराना पाठ दिया हुआ है, इसमें 374 पर है, हाँ वही तो 74 पर नहीं गया, 373, ये जो बड़े प्रति है ना इसमें पेज नंबर 373 373। अब इसमें देखिए आप ऊपर से छठी लाइन है, छठी पंक्ति है, चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा। लोगोत्तमा ये पाठ भी उपलब्ध है, लोगोत्तमा भी पाठ है, लोगोत्तमा गलत नहीं है और लोगोत्तमा भी गलत नहीं है, प्राकृत भाषा के कई भेद। तो चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो, ये पाठ शुद्ध है। तमो वाला, तमा वाला पाठ भी ठीक है, क्रियाकलाप में उपलब्ध होता है, क्योंकि धर्म जो है वो 10 भेद की अपेक्षा से लोगोत्तमा बहुवचन में भी परिणत हो सकता है, उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 हो जाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा, और अगर एक धर्म को पकड़ो तो एक वचन भी बन जाता है। फिर चत्तारी शरणम पवज्जामि, इस पर ध्यान दीजिए, अरहंत शरणम पवज्जामि, श्वेतांबरों में पवज्जामि पाठ है, श्वेतांबरों में, ये ध्यान रखना आप, कुछ चीजें ऐसी बारीक है जो अपन नहीं जानते तो फिर मिक्स हो जाती है कभी कभी, श्वेतांबरों में आ इरियाणम पाठ नहीं है, आ यरियाणम पाठ है। य यक्ष का य, और दिगंबरों में ई इमली का ई। वैसे आप गुजराती में इमली तो नहीं बोलते ना, ईश्वर का तो बड़ा ई होता है दीर्घ, ये ईश्वर का ई नहीं है। इकलौता का ई, तो छोटा जो ई है ह्रस्व, वो आ इरियाणम पाठ में है दिगंबरामने। वैसे आ यरियाणम गलत नहीं है, भाषा की अपेक्षा से अशुद्ध नहीं है, लेकिन एक श्वेतांबर पत्रिका अगर आपको कहीं मिल जाए, हम आपको बताते हैं वो अंक कौन सा है। शाश्वत धर्म नाम की पत्रिका है और सन 92 का चातुर्मास का अंक है वो, अगर आपको मिल जाए तो उन्होंने बहुत सुंदर लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने दिगंबर आमनाय में जो पाठ है उसका समर्थन किया। श्वेतांबर विद्वानों ने उसका समर्थन किया जो पाठ दिगंबर आमनाय में प्रचलित, क्योंकि श्वेतांबर आमनाय में नमो अरिहंताणम न न से चालू होता है और उन्होंने पाठ ऋण का समर्थन किया पढ़ने लायक लेख, और फिर उसमें उन्होंने वो विषय भी लिया है आ इरियाणम और आ यरियाणम, इसमें मंत्र शक्ति अधिक किसमें होगी। तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि जिसमें व्यंजन अल्प हो स्वर ज्यादा हो वो और शक्तिशाली होती है, जैसे ओम, ओम में पूरे स्वर है, आखिरी में म जो है वो व्यंजन है, तो फिर ओ ओम में अपार शक्ति भरी होती। तो आ इरियाणम ई का उन्होंने समर्थन किया, आ इरियाणम मंत्र शक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है नमुकार मंत्र में। तो ये भी एक विषय है, मतलब एक रिसर्च का विषय है इस पर, मतलब आप आधुनिक यंत्रों से, कई प्रकार के गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, कई प्रकार के ऐसे फोटोग्राफिक टेक्निक्स होती है, किरलियान फोटोग्राफी एक रूस का वैज्ञानिक हुआ है किरलियान, उसने क्या किया कि एक बार फोटो खींचते खींचते फोटोग्राफिक प्लेट में विद्युत प्रवाहित कर दी और फिर बाद में जब उसका पॉजिटिव निकाला तो वो चमत्कृत हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। उस पॉजिटिव में जिसका फोटो खींचा था वो फोटो तो आया नहीं, लेकिन उसकी पूरी तरंगें आ गई, पूरी उसकी आभा संबंधी तरंगे, पूरा उसका आभा मंडल आ गया उस फोटोग्राफ में। और उसके बाद जब उस फोटोग्राफी को उन्होंने डेवलप किया, तो डेवलप करने के बाद वो किरलियान फोटोग्राफी के नाम से अभी विश्व विख्यात है। आप पत्ते का फोटो खींचो किरलियान फोटोग्राफी से तो पत्ता नहीं आएगा, लेकिन उसकी रंगीन आभा आ जाएगी उसमें। उसी प्रकार मनुष्य के हाथ की फोटोग्राफ लो तो हाथ नहीं आएगा, लेकिन उसकी किरणें आ जाएंगी। तो नमोकार मंत्र की आराधना करने वाले, एक आ यरियाणम पढ़ने वाले की किरणें ले लो आप उसमें फोटोग्राफी में, और आ इरियाणम वालों की ले लो। इस पर काफी शोध चला है और फिर पता चलता है कि फिर ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और आखिरी में अभी कल्याण सागर महाराज जी हुए हैं बीच में, एक आचार्य कल्याण सागर जी नमोकार मंत्र वाले बाबा, उन्होंने एक बार एक ऐसा प्रयोग कराया था। गमले थे बहुत सारे, पेड़ पौधे लगे थे, अब उनमें उन्होंने एक साथ मतलब बीजारोपण करवा करके फिर समय पर पानी खाद देने का क्रम जारी रखा, लेकिन वो तीन गमले जो थे उनमें एक गमले में तो सामान्यतः वो माली ला करके पानी डाल देता था, दूसरे में गायत्री मंत्र पढ़कर डालता था, और तीसरे में, क्योंकि सब मंत्रों में से जब छंटाई की गई तो अधिक शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र और नमोकार मंत्र, ये दो निकले, और फिर तीसरे में नमोकार मंत्र कर पढ़ करके डालता था पानी। 15 दिन बाद जब उन पौधों की हाइट्स निकाली गई तो सबसे ज्यादा पुष्ट और ऊंचा पौधा कौन सा निकला? वो तो खैर है ही, श्रद्धा है आपकी और फिर बात भी सही है, वो सिर्फ श्रद्धा तक बात नहीं है, वो प्रैक्टिकली वैसा ही हुआ था वहां पर, तो ऐसा प्रयोग हुआ था। और फिर इसके ऊपर अभी एक हिंदी में भी अनुवाद निकला है उस पुस्तक का, पहले इंग्लिश में निकला था, ट्रिएटाइज ऑन महामंत्र नमोकार, कला देवी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक थी है, नमोकार मंत्र का रंगों के साथ कैसे ध्यान करना, अभी सवेरे हम करा रहे हैं ना जो, उसमें कुछ उसकी झलक जरूर है, थोड़ा इसमें बहुत सारी चीजें हम मिला करके बताते हैं ताकि आपको सर्वांगीण लाभ हो, आपके रोग भी ठीक हो जाए, मन भी ठीक हो जाए और बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाए। तो उस प्रक्रिया से अभी हम करा रहे हैं आपको। तो उसमें नमोकार मंत्र के ऊपर जो वो रिसर्च पुस्तक निकली, कला देवी प्रकाशन दिल्ली से अवार्डेड पुस्तक है, वो पुरस्कृत पुस्तक है नमोकार मंत्र के ऊपर। वैज्ञानिक विश्लेषण है उसमें नमोकार मंत्र का, पढ़ने लायक है। इसी प्रकार यंत्रों में भी ये बात होती है, जैसे देरोल का ये नमूना तो बिल्कुल अपने सामने है, वो बिल्कुल रिपोर्ट्स है दोनों, पहले की रिपोर्ट्स कि हार्ट में वाल्व में छेद है और बाद की रिपोर्ट्स वो छेद भर गए हैं, आप खुद देख सकते हैं, आपको ज़्यादा कठिन नहीं है उसकी खोज करना। और ऐसे और भी बहुत सारे असाध्य मरीज ठीक हो जाते हैं। कई बार भातकुली में एक बार एक वायरल ब्लड वाला पेशेंट आया था, वायरल मतलब एड्स हेपेटाइटिस की कोई दवाई नहीं है अभी जिससे इलाज हो जाए, लेकिन भातकुली के आदिनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद जब उसने चेकअप कराया तो फिर वो नेगेटिव निकला ब्लड, जो वहां आने के पहले पॉजिटिव था, माने वायरल वायरस उसके ब्लड में थे लेकिन वहां जाने के बाद में फिर वो नेगेटिव हो गया। क्या बात है। जैन क्षेत्रों में जिन प्रतिमाओं में, आप ये मत समझना कि ये सारे अतिशय देवकृत होते हैं, प्रतिमा का अपना स्वतंत्र अतिशय भी होता है। अगर सारे अतिशय देवकृत होते तो गंधोदक से कैसे रोग मिटते। गंधोदक तो प्रतिमा से स्पर्श किया हुआ अमृत है, उससे कैसे ठीक हो जाते हैं लोग। देवों के अतिशय अलग होते हैं, जैसे गाय के दूध में पानी मिलाकर अगर वहां कोई अभिषेक करने चला जाए तो फिर उस गाय का दूध बंद हो जाता है भातकुली में। और कचनेर में तो इससे भी एक कदम आगे घटना होती है, कचनेर में उस गाय के थन से खून आने लग जाता है। चिंतामणि पार्श्वनाथ है ना महाराष्ट्र में, वहां गाय के थन से खून निकलने लग जाता है। ये सब क्या है, ये देवकृत अतिशय हो सकते हैं, लेकिन प्रतिमा के दर्शन से या फिर प्रतिमा के गंधोदक से जो लोगों के स्वास्थ्य में आराम पहुंच जाता है वो तो प्रतिमा का ही अतिशय मानना पड़ता है। तो ये जो पाठ है पुराना, इस पर काफी चर्चा हुई और फिर अंत में क्योंकि सेकंड हैंड ज्ञान था हमारे पास, हार हमारी हुई और जीत उनकी हुई। जीत किनकी हुई, उनकी, यानी जो जिन आचार्यों ने उस पाठ को बदला नहीं था वही पाठ सही निकला, क्योंकि केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि, यहीं पर सब विद्वान अटक जाते हैं। पंडित पन्नालाल जी भी यहां पर हमसे कहा करते थे कि महाराज इसका अर्थ कैसे लगाओगे, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि, बाकी तो सारे अर्थ निकल जाते हैं पूरे व्याकरण से, कहीं से भी आगे पीछे करके अर्थ आ जाते हैं, सही अर्थ आते हैं, लेकिन इसका अर्थ कैसे निकलेगा। तो फिर अब इतने बड़े विद्वान हमसे पूछे, 70 ग्रंथों के संपादक, हमने पंडित जगन मोहन लाल जी से पूछा, तो फिर पंडित जी भी मतलब वो नया पाठ ही करने वाले, सारे विद्वान एक मत होते हैं लगभग। तो क्या हुआ कि उनसे पूछा तो उनने बोला कि अरे पाठों से क्या मतलब है महाराज, भावों की तरफ ध्यान दो महाराज, भाव से कल्याण होता है। तो हमने सोचा कि अभी इनका मूड नहीं है, अब बहुत बुजुर्ग थे, 95-94 साल की उम्र थी उनकी, तो हमने सोचा कि अब इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, फिर कभी देखते हैं। फिर एक बार देखा हमने उनका मूड थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, तो हमने प्रश्न रूप में उनसे पूछा कि पंडित जी क्या इस पुराने पाठ का भी कोई अर्थ निकल सकता है, ऐसा पूछा हमने। वो सही है गलत है या फिर कैसा है ये सब नहीं पूछा हमने, इसका कोई अर्थ निकल सकता है प्राकृत में। तब फिर पंडित जी ने जब ये प्रश्न पूछा गया उनसे तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका जवाब तो देना होगा। तो फिर क्या करते थे पंडित जी, जब कोई जटिल बात आती थी तो फिर ऐसे सिर पर हाथ रख करके ऐसे ऐसे खुजाते थे, खुजली नहीं चलती थी लेकिन ऐसे ऐसे करते थे, और फिर बहुत सुंदर जवाब देते थे वो, फिर उनकी मुस्कान देख करके ऐसा लगता था जैसे फूल बरस रहे हों इतने बुढ़ापे में। हर उम्र का अपना सौंदर्य होता है, एवरी एज हैज इट्स चार्म। ये जरूरी नहीं है कि जवानी में ही सुंदरता हो व्यक्ति के पास, हर उम्र की अपनी सुंदरता होती है। लेकिन जो मनुष्य सोचता है कि मेरी उम्र ज्यादा बढ़ गई है अब तो मेरी सुंदरता चली गई, तो सचमुच चली जाती है उसकी सुंदरता। ये दुर्भाग्य है मनुष्य का। तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराज बहुत सुंदर अर्थ निकलता है इसका। क्या अर्थ निकलता है? बोले कि केवली पंडित तो धम्मो, ये एक निर्देश समझ लो आप। निर्देश स्वामित्व अपन पढ़ रहे ना, उसमें निर्देश का अर्थ क्या है? परिभाषा। तो केवली पंडित तो धम्मो, ये तो धर्म की परिभाषा हो गई, धर्म का लक्षण हो गया, स्वरूप हो गया। अब धर्म की वो परिभाषा नहीं बता रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मन धर्मेश्वरा विदुः रत्नत्रय धर्म, उसकी चर्चा नहीं। लेकिन धर्म क्या वस्तु है? तो एक एंगल से अगर देखा जाए तो केवली भगवान ने जो बताया वही धर्म है। आ गया समझ में? और कोई भी कुछ भी बोल दे धर्म के बारे में, तो आप किसी से भी पूछ लो, फर्नीचर झाड़ने वाला भी बता सकता है धर्म क्या है। आ रहा है समझ में? आप मैंने आपके यहां जो कुर्सी और टेबल रखे हैं उनको जो साफ करता है ना, वो व्यक्ति भी धर्म के बारे में 5-7 मिनट तो कुछ बोल सकता है, पर वो धर्म है क्या? अपन धर्म किसको मानते हैं? जो जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत है, सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी ने जो बताया है वो धर्म है। तो ये केवली पंडित तो धम्मो धर्म की परिभाषा हो गई। और फिर आगे क्या लिखा है बोलो? शरणम पवज्जामी। अब शरणम पवज्जामी को इसके साथ व्याकरण को जोड़ करके मत लगाओ, इसको अलग लगा लो और शरणम पवज्जामी को अलग लगा लो। और फिर अध्याहार न्याय, देखो पूरा जैन आगम से सिद्ध कर रहे हो, अध्याहार न्याय नाम का एक विशेष ढंग होता है अर्थ निकालने का। अध्याहार का मतलब होता है कि जो चीज वहां नहीं लिखी उसको भी अपन अपने विवेक से समझ लेते हैं। जाता हूं बोला किसी ने, अब सामने वाला समझ लेता है कि ये क्या कह रहा है। जाता हूं किसके बारे में कहेगा वो? मैं जाता हूं, तो मैं बोलने की एकदम अनिवार्यता नहीं रह जाती। गच्छामी इच्छामी, आप पड़गान करते समय बोलते हैं क्या? हे स्वामिन अहम इच्छामी, अहम इच्छा, वो अहम उसमें छुपा रहता है, क्योंकि इच्छामी के साथ क्या लगेगा? स इच्छामी या फिर तुम इच्छामी, ऐसा नहीं बनेगा। स इच्छति बनता है, तुम इच्छसी बनता है और अहम इच्छामी बनता है। तो अहम उसमें गर्भित होता है। उसी प्रकार शरणम पवज्जामी में क्या गर्भित करोगे? केवली भगवान ने जो बताया था उसको मैंने धर्म स्वीकार किया और उसकी शरण को पवज्जामी मैं समर्पित होता हूं। अब देखिए इसमें क्या रहस्य निकला। इसमें रहस्य ये निकला कि अगर आप ये कहते केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामी, तो इसका अर्थ ये निकलता था कि धर्म संसार में अनेक है। देखो संप्रदाय अनेक है ये कहना तो उचित है, लेकिन धर्म बोलचाल में भले सबको धर्म 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 कह देते हैं आप, वास्तव में देखा जाए तो धर्म का कोई टाइटल नहीं है। धर्म के आगे न जैन न बौद्ध न इस्लाम न ईसाई, कोई ऐसा शीर्षक नहीं लगता। धर्म तो वो है जो भगवान ने बताया है। और अब उसमें पहले जो पार्ट बदला हुआ जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि गुंजाइश रहती है। मतलब ये स्वीकार करना पड़ता है पहले कि संसार में अनेक धर्म है और उन अनेक धर्मों में से मैं एक धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। मतलब क्या बना आस्था में क्या भाव आया कि संसार में धर्म तो अनेक है लेकिन मैं इस एक को अंगीकार कर रहा हूं। ये बात हो गई। और वास्तव में क्या है पुराने पाठ में क्या अर्थ निकलता है? पुराने पाठ में अनेक धर्म की गुंजाइश नहीं रह जाती। वहां क्या होता है? वो तो सिर्फ केवली भगवान ने जो बताया है वही एक धर्म रह जाता है। तो कौन सा पाठ ज्यादा पावरफुल हुआ अर्थ की अपेक्षा से? ज्यादा सशक्त पाठ कौन सा निकला? पुराना वाला, बदला हुआ पाठ दूसरे धर्मों को भी अवकाश देता। अब दूसरे धर्मों को, वो तो उनके श्रद्धालु तो मानेंगे कि हमारा धर्म धर्म है, लेकिन वास्तव में धर्म के साथ कोई टाइटल नहीं है, सिर्फ उसका स्वरूप यह है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है अहिंसा लक्षणो धर्म है, अहिंसा उसका लक्षण है, नियति लक्षणो धर्म है। नियति लक्षण भी कहा वहां पर, नियति का अर्थ क्या होता है, नितराम यमनम यति, जो निश्चय संयम रूप परिणमन है वो धर्म है। अभेद रत्नत्रय ही निश्चय से धर्म है। इस प्रकार से वो विवक्षा लगा करके अर्थ निकाल लो, पर वास्तव में देखा जाए तो धर्म क्या है, जो भगवान ने बताया। तो इस प्रकार अभी जो चर्चा चल रही है वो अशरण अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। मंत्र तंत्र कोई काम के नहीं है, निरर्थक है, व्यर्थ है, इसमें क्या शक्ति, ये सब मिथ्यात्व है, ऐसी उतावली मत करना। इतनी देर तक जो व्याख्यान हमने दिया आपको, मंत्र मन की एकाग्रता मांगता है, यंत्र जिनवाणे के अक्षरों को या अंकों को व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ मांगता है, अंकित मांगता है, और तंत्र, तंत्र में शरीर की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, आसन कौन सा होना चाहिए, चटाई कौन सी अपेक्षित है, आप जिस किसी चटाई पर बैठ करके जाप नहीं कर सकते, माला कौन सी होनी चाहिए, कांच प्लास्टिक चीनी मिट्टी अथवा मिश्रित किसी चीज से बनी हुई माला वर्जित होती है, काष्ठ की मालाएं भी वर्जित होती है, मंत्र की आराधना के लिए विशेष रूप से रजत माला, स्वर्ण माला, अक्ष माला, ये सब अपने श्रावकाचार ग्रंथों में जो नाम लिखे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और रत्न मालाएं अपेक्षित होती है। यहाँ मंदिरों में कई प्लास्टिक की मालाएं लगी रहती, इमिटेशन मोतियों की भी माला लगी रहती है, वो सारी मालाएं छूने लायक नहीं है, फेरना तो दूर की बात है, उसका स्पर्श भी करने लायक नहीं है त्यागी व्रतियों को खास तौर से, और फेरना तो दूर की बात है, फेरने के लिए विशिष्ट प्रकार की मालाएं होती, शुद्ध माला, और प्रतिष्ठित करके उसको रखा जाता है, और सूत की माला सबसे बेस्ट, बेस्ट का मतलब क्या, सुगम सुलभ, हर जगह उपलब्ध हो सकती है, और वो भी अगर खुद बनाना सीख जाए कोई, या फिर अच्छी तरह से बनवा ले, क्योंकि क्या होता है कि जो पटुआ लोग रहते हैं, पटुआ मतलब माला बनाने वाले, वो क्या करते हैं कि वो धागा को उसमें अंदर डालने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अशुद्धि हो जाती है उसमें माला में, मुंह में डाल करके उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको दूसरे प्रकार से कर सकते हैं आप, तो फिर आप या फिर उसको बोल दो कि ऐसा मत बनाना आप, ये ध्यान रखना ये धर्म के लिए मंदिर के लिए माला है। तो इतनी सारी बातें, अभी बहुत सारी बातें आपको बताने की है चौमासे में, अभी एक बार में हम कितनी सारी जानकारी दे दें आपको, लेकिन जो जानकारियां आपको दे रहे हैं उसको पॉइंट वाइज आप कम से कम संकेत रूप में आपके पास लिख करके रखना, ताकि कभी स्मरण करो, तो फिर ये ब्रह्मचारी जी रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी बिजली का कोई भरोसा नहीं है, यंत्रों पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर आप उसका रिकॉर्ड अपने पास भी रखो। तो क्या है कि इन मालाओं की शुद्धि अपेक्षित, ये सारी चीजें तंत्र में आती है, और तंत्र में सिर्फ टोना टोटका मात्र नहीं आता, उसमें जैसे नक्षत्रों की बात है, अश्विनी नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र, रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र हो उस दिन अगर आप दवाई लेना प्रारंभ करते हैं तो फिर उस दवाई का असर बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है, 25%, एक चौथाई असर अधिक हो जाता है उसमें, वो दवाई ज्यादा लाभकारी होती है। ये सब तंत्र में आता है, ये सारे विधान अनुष्ठान जो, ये सारी जानकारियां तंत्र की विधि में। तो मंत्र यंत्र और तंत्र, ये तीन विधियां होती है, तो इनका अपनी सीमा में अपने पुण्योदय का अंतरंग निमित्त भी साथ में हूं, और उसके लिए क्या है कि जैसे कोई माला फेरता है तो माला फेरने से पाप कर्म का संक्रमण भी होता है कदाचित, और कभी कभी पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है, पूर्व संचित पाप की निर्जरा भी होती है, कर्मों का क्षरण भी होता है, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो संकट विपत्ति है वो भी शांत होती है। इसलिए माला फेरना व्यर्थ नहीं है। अब ये मत सोचना कि हमारे पुण्य का उदय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, पुण्य के उदय को बुलाना भी पड़ता है पुरुषार्थ पूर्वक। अब अगर पुण्य का उदय आ जाएगा और ठीक हो जाएगा, ये आपका दृढ़ श्रद्धान है, तो फिर आज से नियम ले लो कि अब हम दवाई नहीं खाएंगे कभी जिंदगी में, क्योंकि दवाई से तो कुछ होना जाना नहीं है, होना किससे है? पुण्य के उदय से। संकल्प कर लो, अगर इतना दृढ़ श्रद्धान है आपका, तो संकल्प कर लो कि जीवन में कभी दवाई नहीं खाएंगे। लेकिन एकांत नहीं है। जैन दर्शन में क्या है कि कर्म के साथ नोकर्म को भी निमित्त माना गया है। निमित्त दो प्रकार के हैं, अंतरंग निमित्त अपना कर्म और बाह्य निमित्त नोकर्म। नोकर्म का मतलब जो भी वस्तु सहायक बन जाए, तो उसमें दवाइयां भी हो सकती है। तो फिर क्या हुआ,